بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. موجودہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے پہلی سورہ سورہ حمد ہے. اگر اس سورہ کو ہم دیکھیں تو اس کا جو مرکزی موضوع ہے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آیت اللہ طباطبائی مرحوم اور دوسرے کچھ مفسرین کا نظریہ ہے کہ ہر سورہ کا ایک مرکزی موضوع ہے اور پھر اس مرکزی موضوع کے ذیل میں کچھ ذیلی موضوعات ہیں. انسان تبھی اس سورت سے صحیح طور پہ استفادہ کر سکتا ہے, اس کی تفسیر کر سکتا ہے, اس کو سمجھ سکتا ہے جب اس کے مرکزی موضوع سے بھی واقف ہو اور ذیلی موضوعات سے بھی واقف ہو. ہر سورت کا ایک موضوع ہے, ایک مرکزی موضوع. اب دیکھنا یہ ہے کہ سورہ حمد کا مرکزی موضوع کیا ہے. تو کہا گیا ہے کہ سورہ حمد کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس حمد کے آداب کیا ہیں, حمد الہی کے اور بندگی الہی کے آداب کیا ہیں. آداب بندگی یہ اس سورہ کا مرکزی موضوع ہے. اس سورہ کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں یہ بیان ہوا ہے, یہ دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بندگی کے لائق, وہ کیا دلائل ہیں کہ جو اللہ کو بندگی کے لائق بناتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انسان اس بندگی کے حوالے سے کیا کرے, آداب بندگی کیا ہیں. سب سے پہلے اسباب بندگی کیا ہیں اور پھر آداب بندگی کیا ہیں. یہ سورہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اور ہر سورہ سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سورہ کی جو بسم اللہ ہے اس کا رابطہ اس سورہ کے مرکزی موضوع سے ہے. اس لیے ایک سورہ کی بسم اللہ دوسرے سورہ کی بسم اللہ سے مختلف ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے تو کیا شروع کرتے ہیں, یہ ہر سورہ کا جو مرکزی موضوع ہے اس کے شروع کرنے کے حوالے سے ہے. اس لیے سورہ حمد کی جو بسم اللہ ہے وہ علیحدہ ہے, سورہ توحید کی جو بسم اللہ ہے وہ علیحدہ ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ نیت کی ہے کہ سورہ حمد پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی اس نیت سے, اب اگر چاہتے ہیں کہ سورہ حمد نہیں کس کوئی اور سورہ پڑھیں تو وہ پہلے پڑھی ہوئی بسم اللہ کافی نہیں ہے, دوبارہ آپ کو بسم اللہ پڑھنی پڑے گی. اس لیے کہ وہ جو دوسری سورہ ہے اس کا مرکزی موضوع کچھ اور ہے اور بسم اللہ کو ہم نے اس کے ساتھ مربوط کرنا ہے. اس لیے سورہ حمد میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حمد کی ابتدا ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں. پھر اس سورہ کی جو پہلی آیت جہاں سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ, حمد خدا کے لیے ہے. حمد, تعریف, ثنا یہ سارے عربی الفاظ ہیں. تعریف اس کمال کی ہوتی ہے کہ جو کسی بھی مخلوق میں ہو لیکن اس کا اختیاری نہ ہو. مثلا چاند خوبصورت ہے, اگر ہم اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں تو یہ تعریف ہوگی, یہ حمد نہیں ہوگی. اس لیے کہ چاند نے یہ خوبصورتی اپنے اختیار سے نہیں اپنائی ہے. لیکن ایک انسان ہے, اگر اس نے صداقت اور سچائی اختیار کی ہے اپنے اختیار سے, اپنے اندر پیدا کی ہے, سچ بولتا ہے, صداقت उसकी ज़बान पे, उसके अमल में है। तो अब अगर हम इसकी सदाकत की तारीफ़ करेंगे तो ये हम्द हो जाएगी, इसलिए कि ये उसने अपने अंदर सिफत अपने इख्तियार से पैदा की है। जब हम कहते हैं कि हम्द खुदा के लिए है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के ये तमाम कमालात उसके इख्तियारी हैं, ये जबरी नहीं हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारी तौर पे कमालात इख्तियार किए हैं। हम्द खुदा के लिए है। देखें, हमने कहा कि हमेशा जो तारीफ़ और हम्द होती है वो किसी कमाल की होती है, और हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बहस में कहा कि तमाम कमालात अल्लाह के पास मौजूद हैं, बाकी मखलूक के पास जितने कमालात हैं वो भी सब खुदा के ही दिए हुए हैं, यानि खुदा के ही कमालात हैं, मालिक कमालात का खुदा है। चूँकि हम्द कमाल की होती है और चूँकि तमाम कमालात अल्लाह के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम्द भी तमाम अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। अब यहाँ पे ये भी जहन में होना चाहिए कि जब हमने ये कहा कि तमाम हम्द अल्लाह के लिए है, तो क्या हम मखलूक की तारीफ़ नहीं करते? क्या हम मखलूक के अंदर जो कमालात मौजूद हैं उनको हम सना नहीं कहते और उसकी तारीफ़ नहीं करते, उसका हम्द नहीं कहते? क्या वो मखलूक की बुनियादी तौर पे तारीफ़ है, हम्द है? जी नहीं। यही इस जुमले का मकसद मतमे नज़र है। कहा यह जा रहा है कि आप किसी की भी तारीफ़ करें वो उसकी तारीफ़ नहीं होगी बल्कि वो अल्लाह की तारीफ़ हो जाएगी। आप किसी की भी हम्द करें मखलूक में से, वो उसकी हम्द नहीं होगी, वो अल्लाह की हम्द हो जाएगी। आप इस मिसाल को जहन में रखें कि अगर कोई तस्वीर है जो मुसव्विर ने बनाई है और आप उस तस्वीर की तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पे तस्वीर की तारीफ़ नहीं है, मुसव्विर की तारीफ़ है जिसने ये कमाल उसके अंदर रखा है। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम कमालात अपने हैं, मखलूक को अल्लाह ने दिए हैं, इसलिए अगर मखलूक के कमालात की तारीफ़ करेंगे तो वो भी उनके खालिक की तारीफ़ हो जाएगी, हम्द हो जाएगी। इसलिए अल्लाह की हम्द और तारीफ़ के अलावा किसी और की तारीफ़ की ही नहीं जा सकती, मुमकिन ही नहीं है। जिसकी भी तारीफ़ करेंगे वो पलट के उसके खालिक और मालिक की तारीफ़ हो जाएगी। इसलिए हम्द खुदा के लिए है। अब आगे कुछ चीज़ें बयान हो रही हैं कि जो असबाब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बंदगी के लायक है। सबसे पहले कहा गया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब वही है। बंदगी रब की होती है, रब आलमीन का अल्लाह तबारक व तआला है, इसलिए ये पहली दलील है अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी अख्तियार करने के लिए कि वो आलमीन का रब है। रब किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की जितनी फ़ेल की सिफ़ात हैं, इसलिए कुछ ज़ात की सिफ़ात हैं जिस तरह के हई है, मुरीद है और आलम है, इसी तरह से कुछ फ़ेल की सिफ़ात हैं। फ़ेल की तमाम सिफ़ात को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक खालिक एक रब। खालिक का मतलब यह है कि वजूद अता करने वाला, रब का मतलब यह है कि इस वजूद को तरबियत करके उसके मुनासिब कमाल तक पहुंचाने वाला, तरबियत करने वाला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ही पूरी कायनात की तरबियत करता है, इसलिए वही बंदगी के लायक है। हम देखते हैं कि ज़मीन में एक किसान ने बीज बोया, हम उसको किसान कहते हैं, हालांकि उसने सिर्फ काम ये किया है कि मिट्टी के अंदर उस बीज को मख्फी कर दिया है। इस बीज को उगाना और इसको मुनासिब कमाल तक पहुंचाना, दाने तक पहुंचाना, समर तक पहुंचाना, ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ेल है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आलमीन का रब है। इंसान के हवाले से भी ऐसे ही है। बच्चा है, बच्चे को वालिदैन पानी उसके मुंह में डालते हैं, ग़िज़ा उसके मुंह में डालते हैं, लेकिन इस बच्चे के अंदर ये ग़िज़ा और ये पानी उसकी ग़िज़ा बने, उसका वजूद का हिस्सा बने, उसका वजूद मजबूत हो, उसका वजूद आगे बढ़े, मुनासिब कमाल तक पहुँचे, ये सब करने वाला अल्लाह तबारक ताला है। इसलिए आलमीन का रब है, आलमीन का रब है। आलमीन में हर चीज़ शामिल हो जाती है सिवाय खुदा के, मलाइका भी इसमें शामिल हैं और जितने अवालिम रूहानी अल्लाह तबारक ताला ने खल्क किए हैं वो भी सारे शामिल हैं। इस मादी दुनिया में जितने मौजूदात हैं वो सब इसमें शामिल हैं। अल्लाह तबारक ताला के अलावा हर चीज़ आलमीन है, और आलमीन को तरबियत करने वाला और उसका रब अल्लाह तबारक ताला है, एक है। चूँकि उनकी ज़रूरियात पूरी करने वाला और तरबियत करने वाला अल्लाह है, इसलिए लायक बंदगी वही है। फिर कहा गया कि अर्रहमान अर्रहीम, ये जो रब है ये तरबियत करता है, लेकिन तरबियत करने के भी मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। कभी एक तरबियत करता है एक उस्ताद अपने तालिब इल्म की, लेकिन उसका अंदाज सख्ती का होता है, सज़ा का होता है। थोड़ी गलती हुई नहीं और सज़ा उसको देता है ताकि वो बेहतर नतीजा जाहिर करे, एक ये तरीका है। लेकिन एक और तरीका है, वो ये है कि उस्ताद शागिर्द की तरबियत करता है लेकिन मोहब्बत के साथ और मेहरबानी के साथ। ये जब कहा गया कि रब्बुल आलमीन है, तो ज़हन में फौरन ये सवाल पैदा होता है कि वो तरबियत किस तरीके से करता है, सज़ा दे के तरबियत करता है या प्यार व मोहब्बत के साथ तरबियत करता है। तो जवाब ये दिया जाता है कि वो अर्रहमान अर्रहीम है, वो तरबियत करता है मेहरबानी के ज़रिए से, वो तरबियत करता है मोहब्बत के ज़रिए से। चूँकि अल्लाह तबारक व ताला आलमीन का रब है, और चूँकि वो मोहब्बत के साथ तरबियत करता है, इसलिए बंदगी के लायक वही है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें दलील बन गई। एक ये कि आलमीन का रब है, दूसरा ये है कि वो तरबियत जो करता है वो अर्रहमान है अर्रहीम है। ये तीन चीज़ें असबाब हुई। चौथी चीज़ जो इसमें बयान हो रही है वो ये है कि मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक है वो। जब जजा के दिन का मालिक है, यानी इंसान जो कुछ करता है अमल, फ़मन यअमल मिसक़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरह, वमन यअमल मिसक़ाला ज़र्रतिन खैरन यरह, वमन यअमल मिसक़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरह, नेकी हो बुराई हो, जजा देने वाला खुदा है, हकीकी जजा देने वाला खुदा है। इसलिए आलम आखरत जो होगा उसमें अल्लाह तबारक व तआला की मालिकियत बिल्कुल ज़ाहिर हो जाएगी। इस दुनिया का मालिक भी खुदा है, लेकिन इस दुनिया में इंसान गफलत में है और समझता है कि मैं मालिक हूँ। फिर अल्लाह की मालिकियत ज़रा उसका ज़ुहूर इस दुनिया में कम है, लेकिन आखरत में उसकी मिल्कियत का, मालिकियत का ज़ुहूर जो है वो वाज़े हो जाएगा। इसलिए कहा गया मालिक यौमिद्दीन है। अब ये चार दलील हुए कि जिसकी बुनियाद पे कहा गया कि अल्लाह की बंदगी अख्तियार करो। चूँकि ये चार सिफात हैं जिसमें हों उसका बंदा बना जाता है, जो आलमीन का रब हो, जो आलमीन पर रहमान हो, जो आलमीन पर रहीम हो, और जो मालिक यौमिद्दीन हो, जजा देने वाला हो, उसी की बंदगी की जा सकती है। इसलिए चार दलाइल हैं। इंशाल्लाह आगे फिर हम इसको देखेंगे कि अब जब ये चार दलाइल हैं कि खुदा इस लायक है कि उसकी बंदगी की जाए, तो फिर देखेंगे बंदगी क्या चीज़ है। इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।